अपना जीवन सफल बनाए।
ओम शांति। कल हम सभी ने स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त किया और पिता परमात्मा की भी सही पहचान प्राप्त की। अब हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जीवन जीते हैं, ये संसार का खेल कैसे चलता है, इसके बारे में भी सही ज्ञान ना होने के कारण हम अपने जीवन से, परिस्थितियों से, साथी भाई बहनों से नाराज हो जाते हैं। कहीं तो परमात्मा से ही नाराज हो जाते हैं कि काहे को दुनिया बनाई। गीत गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाए। तो वो परमात्मा पर नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमें इस सृष्टि चक्र को भी अच्छी तरह से समझना है। तो ये जो सृष्टि है, संसार का जो खेल है, वो प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। हम ये समझते रहे कि ये नर और नारी का खेल है। प्रकृति और पुरुष माना ये समझते हैं कि स्त्री और पुरुष का खेल है, नर और नारी का ये संसार खेल है। परंतु प्रथम लेसन ने ही आपको स्पष्ट कर दिया कि स्त्री शरीर है, शरीर को स्त्री, शरीर को पुरुष कहते हैं। स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, दोनों ही प्रकृति के पांच तत्वों से बने हैं। अब आपको पक्का हो गया होगा कि मैं स्त्री हूं ये सोचना गलत है, मैं पुरुष हूं ये सोचना गलत है, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। प्रकृति से ही सभी पदार्थ चीजें बनती हैं। तो प्रकृति माना क्या और पुरुष माना क्या? प्रकृति माना पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये प्रकृति के पंच महाभूत हैं, कुदरत जिसे हम कहते हैं। कुदरत ने हमें ये पांच तत्व दिए हैं, लेकिन इन पांच तत्व से हमने करोड़ों अरबों खरबों चीजें बनाई है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन, ये प्रकृति के पांच तत्व से बने हैं। हम सुबह से लेकर रात तक कितनी चीजों का उपयोग करते हैं, कितने न वस्तुएं साधन उपयोग करते हैं। ये जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वैभव है, पदार्थ है, साधन है, हमारे ये शरीर है, ये भी एक मटेरियल है। ये प्रकृति के पांच तत्व से बने हैं। ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी हैं। न उसकी उत्पत्ति होती है, न इसका अंत होता है। ये अनादि अविनाशी हैं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति अनादि अविनाशी है। भल वैज्ञानिक ये प्रयास करते हैं, संशोधन करते रहते हैं, खगोल शास्त्री, भूस्तर शास्त्री मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनल ट्रूथ, मूल सत्य नहीं बता पाते हैं। वे अपने संशोधन के अंत में अंदाजे की बात बताते हैं कि अरबों वर्ष पूर्व सूर्य निहारिका से अलग हुआ, अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ठंडी हुई, उसका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर बना। ये अंदाजे की बात बताते हैं कि लगभग ऐसा हुआ होगा। इसका फाइनल ट्रूथ, मूल सत्य स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं को बताते हैं कि ये पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी हैं। इसलिए बचपन में भी एक दोस्त से प्रश्न पूछते थे कि बीज पहले या फल पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले। इसका कोई आंसर नहीं है। उसका आंसर यही है कि ये अनादि अविनाशी क्रम में ये संसार का चक्र चलता ही रहता है। दूसरा है पुरुष। पुरुष माना आत्मा, चैतन्य शक्ति। गीता में भी आत्मा को पुरुष भी कहा है कि शरीर नौ द्वार वाली पुरी है, नगरी है। इस नौ द्वार वाली पुरी में रहने वाली आत्मा शक्ति को पुरुष कहा हुआ है। पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा, और आत्मा भी अनादि अविनाशी। गीता में दूसरा अध्याय अगर आपने अध्ययन किया हो तो उसमें कई बातें ये बताई हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, अविभाज्य है। ये श्लोक गीता का ही है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। माना आत्मा वो चैतन्य शक्ति है जो अति सूक्ष्म है, प्रकृति का कोई भी साधन शस्त्र उसे छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। आत्मा प्रकृति से अलग अविनाशी चैतन्य शक्ति है। अब आप देखिए, आत्मा चैतन्य शक्ति भी अनादि अविनाशी है, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, और उनसे बना हुआ ये सृष्टि खेल भी अनादि अविनाशी है। ये कब उत्पन्न हुआ, कब अंत होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब यही है कि यह अनादि अविनाशी। इसलिए हम कहते हैं कि ये बना बनाया खेल है, ये बना बनाया खेल है, क्योंकि ये अनादि अविनाशी है। अब इस सृष्टि खेल में प्रकृति क्या कार्य करती है, आत्मा का कार्य क्या है, और परमात्मा का रोल क्या है। प्रकृति स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे करती, चैतन्य शक्ति आत्मा कैसे कार्य करती है। तो प्रकृति स्वयं अपनी शक्ति से स्थापना पालना विनाश का कार्य करती ही रहती है, सर्जन संचालन विसर्जन की प्रक्रिया संसार में चलती ही रहती है। बीज जमीन में गिरते हैं, प्राइमरी कक्षा में विज्ञान में जनरल साइंस में ये बातें आती थी कि पेड़ के बीज फल के द्वारा जब बाहर आते हैं तो वो बीज पंछियों के द्वारा पवन के द्वारा जमीन पर गिरते रहते हैं, वो स्थापना का कार्य हुआ। वही बीज प्रकृति के पांच तत्वों के सुयोग से सहयोग से अंकुरित होता है, पौधा पनपता है, वृक्ष उगता है, धूप पानी हवा इन सब से वो बीज अंकुरित होता है, पौधा विकसित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है। और वही प्रकृति के पांच तत्व जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो विनाश का कार्य करते हैं। आज हम देख रहे हैं प्रकृति तमो प्रधान बन गई है, अर्थक्वेक भूचाल होते हैं, बाढ़ आती है, हवा के तूफान चलते हैं, अकाल होते हैं, गर्मी होती है, इनके द्वारा विनाश का भी कार्य होता है। तो ये है प्रकृति के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य। प्रकृति स्वयं ही ये कार्य करती रहती है। विज्ञान के विकास के पहले लोगों के मन में काफी अंधश्रद्धा थी। लोग ये मानते थे कि भगवान ही सूर्य चमकाते हैं, भगवान ही बिजली चमकाते हैं, भगवान ही बरसात बरसाते हैं। लोग इतने तक मानते रहे कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लोग सूर्य को देवता, चंद्र को देवता समझकर उनकी पूजा भी करते रहते हैं, कोई पीपल की, तुलसी की, गंगा नदी की पूजा करते रहते हैं। लेकिन अब विज्ञान के विकास के बाद काफी अंधश्रद्धा खत्म हुई है। अब हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, बिजली कैसे चमकती है, बरसात कैसे बरसती है, हवा कैसे चलती है, पत्ते कैसे हिलते हैं। ये प्रकृति का कार्य है, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। अगर प्रकृति परमात्मा की इच्छा से कार्य करती तो परमात्मा तो सुखदाता है, कल्याणकारी है, रहम दिल है, वो तो दयालु कृपालु है। तो प्रकृति भी सदा सुखदाई होनी चाहिए, लेकिन आज प्रकृति उपद्रवी बन गई है। तो प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा से कार्य नहीं करती है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रकोप हुआ। ईश्वर कभी कोपाईमान होता ही नहीं, वो है ही प्यार का सागर। प्रकृति का प्रकोप है, परमात्मा कोपाईमान नहीं होता है। और प्रकृति के द्वारा ये विनाश का कार्य है, इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं। इस प्रकार हम मनुष्य आत्माएं भी जो स्थापना पालना विनाश का कार्य करते, रोज आप देखिए, आप स्वयं अपने जीवन के ब्रह्मा हैं। आप सारा दिन जो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो स्थापना का कार्य है। फिर उससे प्रैक्टिकल में लाते, आप एक नक्शा बनाते हैं, एक थॉट मन में आता है। जैसे इस हॉल में आप बैठे हैं, इसको बने हुए 17 वर्ष हुए। 17 वर्षों के कुछ महीनों पहले ये हॉल कहां था? कहां था? एक व्यक्ति के मन में आइडिया के रूप में था कि हमें ऐसा हॉल बनाना होगा। उस आइडिया को आप पेपर पर लाते हैं, एक नक्शा बनता है, और फिर वो प्लान प्रैक्टिकल में आता है। आज ये हॉल आप देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सारा विश्व, संसार की जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, मानव मन की उपज है। पहले वो आइडिया के रूप में उत्पन्न होती है, फिर हम उससे प्रैक्टिकल में बनाते हैं। लेकिन वो ही मनुष्य आत्मा जब पतित बन जाता है, विकारों के वश होता है, वो ही विनाश का भी कार्य करता है। लड़ाई, झगड़े, मारामारी, खून, युद्ध के द्वारा विनाश का कार्य करता है। अब मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है वो स्वयं के संस्कारों अनुसार करती है। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मान लो हमें कोई गलत पाप करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, फिर हमें अंदर से होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में लोग कहते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान हमें पाप न करने के लिए कहता है। परंतु थोड़ा आप शांति से सोचिए कि क्या मनुष्य बुरा ही सोचता है? अच्छे कर्म की प्रेरणा परमात्मा देता है तो क्या मनुष्य आत्मा गलत ही सोचता है? फिर तो वो सदा गलत ही करता, तो सदा दुख ही पाता। पर हम जीवन में सुख भी पाते हैं तो दुख भी पाते हैं। मीन्स हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो पाप कर्म भी करते हैं। मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म की प्रेरणा ईश्वर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा अपने आप में भी कि हम इस अंतः प्रेरणा भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस आंतरिक प्रेरणा को भी दबाकर हम कई बार गलत कर्म कर लेते हैं। अगर वो अंतः प्रेरणा परमात्मा की होती तो वो इतनी कमजोर क्यों है जो इंसान उसको भी दबाकर पाप कर लेता है? फिर तो ऐसी प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वास्तव में वो जो अंतः प्रेरणा है वो आत्मा की ओरिजिनल, जो उनकी असली क्वालिटीज है, जो उनकी असलियत है। हर आत्मा का असली स्वरूप सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। प्रथम लेसन में आपने समझा कि आत्मा सात गुणों का स्वरूप है। शरीर पांच तत्व से बना है, आत्मा सात गुणों का स्वरूप है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। तो हमारा जो असली सत्य शुद्ध स्वरूप है वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लेटेस्ट संस्कार खराब है, इसलिए जब गलत संस्कारों की प्रबलता हो जाती है तो हम अच्छी प्रेरणा को दबाकर गलत काम करते रहते हैं। तो वास्तव में सही या गलत, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, मनुष्य आत्मा खुद के ही संस्कारों की प्रबलता अनुसार करता है। आपने देखा होगा कि अच्छे परिवार में, अच्छे माहौल में रहते हुए भी, अच्छी पालना मिला हुआ बच्चा भी गलत मार्ग पर चला जाता है गलत संस्कारों के कारण। और कोई कितने भी गंदे वातावरण में रहे पर उनका ओरिजिनल संस्कार अच्छा है तो वो उस गंदे वातावरण के बीच भी कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहता है। तो मनुष्यात्मा सोचता है, वो प्लानिंग, कर्म करना प्रैक्टिकल, और कर्म का प्रभाव संस्कार के अनुसार कर्म करता रहता है। इसलिए परमात्मा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। कई बार हम भाई बहनों को कहते हैं कि आप रोज आइए, आधा घंटा ज्ञान योग करिए, माउंट आबू चलिए। तो अक्सर लोग क्या जवाब देते हैं कि बहन जी, भगवान की कृपा होगी तो हम जरूर आएंगे, उनकी इच्छा होगी तो हम जरूर आएंगे। अब आप बताइए कि ईश्वर की इच्छा तो है ही ना कि हम महान बने, पवित्र बने, सत्य बने, ईश्वर की इच्छा तो है ही ना, पर हमारी अपनी इच्छा नहीं होती है, इसलिए भगवान का नाम ले लेते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो हम आएंगे। बाकी सारे कर्म हम खुद प्लानिंग करके करते हैं, पर जब कोई आध्यात्मिक उन्नति की बात होती है और खुद की इतनी प्रबल इच्छा नहीं है तो हम ईश्वर का नाम दे देते हैं कि भगवान की कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी, हम जरूर आएंगे। तो वास्तव में हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे संस्कार की बात। सत्यता ये है कि हमारे विचार, वाइब्रेशंस, हमारी वाणी, कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति मनुष्यात्मा को फॉलो करती, इसलिए समस्त प्राणी जगत में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति, पशु, पंछी, हम मनुष्यात्मा को फॉलो करते। जब हम पवित्र श्रेष्ठ हैं तो पशु पंछी, समस्त प्रकृति जगत, ये संसार स्वर्ग होता है, श्रेष्ठ होता है। जब हम पतित भ्रष्ट बनते हैं तो ये संसार का खेल, प्रकृति, पशु पंछी सब उपद्रवी बन जाते हैं। कई उदाहरणों से ये बात मैं आपको स्पष्ट करूंगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख मिलते हैं, रामराज्य के लिए कहा जाता है कि रामराज्य में शेर और बकरी, शेर और गाय, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते। माना इतना प्रकृति का तालमेल था और सात्विकता थी, पर जब हम अपने जीवन के नियम संयम को तोड़ते हैं तो प्रकृति, पशु पंछी जगत भी उपद्रवी बन जाते हैं। जब हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है तो प्रकृति जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहता है। हम तमो प्रधान बनते हैं तो प्रकृति, पशु पंछी जगत भी तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए हम मनुष्यात्माओं का बहुत हीरो पार्ट है, जिम्मेवारी भरा रोल है। हमारे कर्मों के आधार पर संसार का उत्थान और पतन होता है। इसलिए प्रकृति को प्रभावित करने वाली हम मनुष्य आत्माएं हैं। दूसरा, द्वापर युग के ऋषि मुनियों की बात भी हम सब पढ़ते हैं। आप जानते हैं द्वापर युग में ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच आश्रम बनाकर रहते थे, गुरुकुल चलाते थे, सबको शिक्षा देते थे और उनकी तपस्या के पॉजिटिव वाइब्रेशन से आसपास के जंगल में भी इतना प्रभाव फैलता था, जो जंगल के हिंसक प्राणी, शेर, बाघ, चीते जैसे हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। जब हम शुद्ध पवित्र होते हैं तो पशुओं की हिंसक वृत्ति का भी शमन हो जाता है। हम स्कूल में पढ़ते थे, एक काव्य हमें आता था, गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि हुए राजा कवि, माना वो राजा थे और उनका नाम था कवि कलापी। उनका एक काव्य हमें पढ़ने में आता था और उसमें ये कहानी है कि एक राजा था और वो बहुत प्रजावत्सल था, प्रजा की सुखाकारी के बहुत कार्य करता था, बहुत प्रिय राजा था। वो अपना वेश बदल कर नगर चर्चा करने निकलता था ताकि पता चले कि मेरी प्रजा सुखी है या दुखी है। तो एक बार वो घोड़े सवार बनकर नगर की चर्चा करने निकलता है और एक किसान माता के खेत में जाता है। वहां गन्ने की खेती बहुत सुंदर दिखाई देती है। वो माता भी गन्ना काटकर रस निकालकर ग्लास भरकर उससे देती है पीने के लिए और वो रस इतना मीठा सुंदर होता है कि राजा खुश हो जाता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल होती है। लौटते उसे मन में विचार आता है कि इतनी अच्छी फसल होती है, इससे राज्य कोष में भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो वो टैक्स डालता है, जनता पर केस टैक्स डालता है। फिर साल के बाद वापस नगर चर्चा करते हुए वही माता के खेत में आता है। वो माता फिर गन्ने का रस निकाल कर देती है पर वो थोड़ा सा रस निकलता है और इतना मीठा नहीं होता है। तो राजा पूछता है कि माता इतना ही रस क्यों निकला? तो वो माता जवाब देती है कि दयाहीन हुआ राजा, तब से रसहीन हो गई धरा। जब से हमारा राजा दयाहीन हो गया, प्रजा को लूटना शुरू किया, टैक्स डाला, तब से ये धरती भी रसहीन बन गई है। तो हमारे विचार, वृत्ति, वाइब्रेशंस, हमारे मन के सूक्ष्म भाव, भावना, कर्मों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। और ये बात हमारे देश के ही वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी ये सिद्ध करके बताया कि हमारे पेड़ पौधों पर हमारे वाइब्रेशंस, इवन हमारे गीत संगीत का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने बगीचों में, खेत में बहुत सात्विक, साइलेंट, मीठे मधुर गीत संगीत बजाते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है पौधों का। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा जो हमारी रूरल डेवलपमेंट विंग है, उन्होंने खेतों में योग का प्रयोग किया। हमारे भाई बहने खेतों में जाते हैं और अलग अलग बैठते हैं, बीज बोते हैं, तब से लेकर उसकी हर प्रक्रिया में योग करते हैं, वाइब्रेशंस फैलाते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। गुजरात की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक पंतनगर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दोनों ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा योग के प्रयोग के जो परिणाम लिए, स्टैटिस्टिक लिए, बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं कि योग के प्रभाव से हम खेती भी अच्छी कर सकते हैं, फसल और फल भी अच्छे आ सकते हैं। कहने का भावार्थ, हमारे विचार, वाणी, कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। ये एक साइकिक, यूरी गैलर का नाम आपने सुना होगा, जो थॉट पावर से भौतिक पदार्थों पर विचार शक्ति का प्रभाव सिद्ध करता है। वो सिर्फ देखता है उस चीज को और चाबियां बेंड कर देता है, चम्मच बेंड कर देता है, चलती घड़ियां रोक देता है। लंदन में हमारी दादी जानकी जी के साथ यूरी गैलर का एक कार्यक्रम हुआ था और उसने सभा के बीच हाथ में बीज लिए और थॉट पावर से हाथ में बीज अंकुरित करके दिखाए। ये विचारों का प्रकृति पर प्रभाव। हमारे देश में हमारे बुजुर्ग शुरू से हमें सिखाते रहे हैं कि विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है और वो अन्न द्वारा खाने वाले व्यक्ति के मन पर उसका असर आता है। हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी ऐसी वाणी, जैसा संग ऐसा रंग। भोजन बनाते समय अगर हम गुस्से में हैं, व्यर्थ सोचते हैं, नाराज है, इविल बुद्धि है, तो हमारे थॉट्स का प्रभाव भोजन पर पड़ता है और वो भोजन खाने वाले व्यक्ति के मन को भी प्रभावित करता है। इसलिए देखिए, भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन हम प्रसाद कहते, मां के हाथ से प्यार का बना हुआ भोजन और होटल में बिजनेस माइंड से बनाया हुआ भोजन, कितना अंतर। इसलिए अगर हम साइलेंस में रहकर परमात्मा की याद और शुभ भावना से भोजन बनाते हैं तो खाने वाले व्यक्ति के मन भी शुद्ध बनते हैं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा का प्रभाव प्रकृति जगत पर पड़ता है। जब हम पावन हैं, प्रकृति भी सात्विक सुखदायी है। जब हम पतित बनते हैं, प्रकृति तमोप्रधान और उपद्रवी बनती है। इसलिए विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा व्यक्ति परिवर्तन करते हैं। जब प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और हम मनुष्य आत्माएं दोनों पतित बन जाते हैं, तब कलयुग अंत, सदा पावन परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। हम मनुष्य आत्माओं की पवित्रता के बल से फिर ये भौतिक जगत भी पवित्र बनता है। तो ये है परमात्मा का रोल कि जब कलयुग के अंत प्रकृति और पुरुष दोनों पतित बन जाते हैं, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिससे फिर हम पुरुषार्थ कर पावन बनते हैं और हमारी पवित्रता के बल से फिर पशु पंछी प्रकृति जगत पावन बनता है। इसलिए परमात्मा को हम कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। जब ये संसार बिगड़ जाता है, हम मनुष्य आत्माओं के बिगड़ने से पूरा संसार का व्यवस्था तंत्र बिगड़ जाता है, तब वो ऑलमाइटी परमात्मा आते हैं और हमें पावन बनाते हैं। इसलिए हमारा अपने जीवन को, अपने मन वचन कर्म को पवित्र और श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। सृष्टि का खेल अनादि अविनाशी है, चलता ही रहता है। प्रकृति जगत में कई ऐसे चक्र हैं जो चलते ही रहते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र चलता ही रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। कितनी भी घोर अमावस की अंधेरी रात हो, फिर भी सुबह का सूरज उगता ही है। तो ये डे एंड नाइट का साइकिल है जो अनादि अविनाशी क्रम से चलता ही रहता है। मौसम का साइकिल, गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, फिर सर्दी होती है, फिर वापस गर्मी, वर्षा, सर्दी। ये मौसम का साइकिल है जो अपने आप बदलता रहता है, चलता रहता है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, ये साइकिल चलता ही रहता है। इस प्रकार आप देखिए बरसात का साइकिल, सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, फिर वो बादल बरसते हैं, नदी झरने बहते हैं, फिर समुद्र में आकर मिलते हैं, फिर भाप बनती है। ये साइक्लिकल ऑर्डर में चलता ही रहता है। तो जैसे प्रकृति जगत के ये छोटे छोटे साइकल्स हैं, जो अनादि अविनाशी रूप से चलते ही रहते हैं, सेम द होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि अविनाशी है, जो चलता ही रहता है। इसलिए इसे सृष्टि नाटक कहते हैं। नाटक मीन्स न अटक, जो अटकता नहीं है, चलता ही रहता है। हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन है, अपना समय की अवधि है। डे एंड नाइट का साइकिल, रात और दिन का चक्र 24 घंटे का, फिर वो अपने आप बदलता है। सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और फिर से सोम मंगल बुध गुरु। महीनों का साइकिल 12 मास के बाद वापस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन, ये पूरा संसार का चक्र 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये चक्र रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, क्योंकि हर चक्र जो आपने देखा, दिन रात का चक्र, सप्ताह का चक्र, महीनों का चक्र, मौसम के चक्र, लाइफ एंड डेथ का साइकिल, ये सब अपने निश्चित समय अवधि के बाद रिपीट होते हैं। ये पूरा सृष्टि का खेल प्रति 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बना बनाया ये संसार का खेल है, जो चलता ही रहता है, नया कुछ भी नहीं है। तब उसमें कहा है, चिंता ताकी कीजिए अनहोनी होए, है ना। अनहोनी हो तो हम चिंता करें ना, जो हुआ था वो ही हो रहा है, तो चिंता नहीं करनी है, परंतु वर्तमान पर फोकस रहना है। इसलिए कहते हैं नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं, पहले भी हुआ था, फिर हुआ है, फिर होगा, पर क्या हुआ था पता नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं। इसलिए वर्तमान को देखकर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गीता में भी कहा है, देखो ये जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानी होती। अब जब जब माना पहले भी हुई थी, भगवान आए थे, फिर हुई है, फिर परमात्मा आए हैं, फिर जब होगी फिर परमात्मा आएगी। इसलिए हम कहते हैं जब जब। गीता में ये भी एक श्लोक है जो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार चक्र का ऐसा कोई काल नहीं जब तुम, हम और ये राजाएं ना थे, और ऐसा कोई काल नहीं होगा जब तुम, हम और ये नहीं होंगे। माना ये पुनरावृत होता रहता है। ज्योतिष विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है। ज्योतिष रोज उठ के सुबह अखबार में पहली कौन सी कॉलम पढ़ते हैं? अधिकतर लोग अपना राशि फल देखते हैं कि आज मेरी राशि में क्या लिखा है। जहां तहां ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते रहते हैं कि देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है। और ज्योतिष यथा ज्ञान बताते भी है कि भाई तुम्हारे नसीब में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है ना कि जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित है, तब तो वो बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जीवन की हर घटना अकस्मात नहीं है, अचानक ऐसा क्यों हुआ सवाल नहीं है। हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है, पर हमें अपने पूर्व का हिसाब पता नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो इतना अच्छा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। आप सिर्फ वर्तमान को जानते हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं, पर पहले जो आपका उनके साथ माइनस प्लस हुआ, तब तो उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो ये संसार का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। हमारा कर्तव्य ये है, क्योंकि हमारे हाथ में वर्तमान है, जो हो चुका वो तो हो चुका, हिसाब बन गया, क्या होगा चिंता करने से फायदा नहीं। वर्तमान हमारे हाथ में है, अगर हम अपने वर्तमान के हर क्षण, हर विचार, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका वर्तमान श्रेष्ठ है, उनका भविष्य अंडरस्टूड है कि वो श्रेष्ठ होना ही है। तो इस प्रकार सृष्टि का खेल अनादि अविनाशी रूप से चलता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर क्षण, हर चीज, हर आत्मा की स्थिति बदलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में स्थाई कुछ भी नहीं है। ओनली चेंज इज परमानेंट। परिवर्तन होना स्थाई है। इसलिए आप देखिए, हर चीज, हर आत्मा परिवर्तन को प्राप्त होती है। संसार का खेल भी परिवर्तन को प्राप्त होता है। आप जीवन चक्र में देखिए, पैदा हुए बच्चे के रूप में, धीरे धीरे बचपन, युवा, प्रौढ़ अवस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धत्व समाप्ति। ये साइक्लिकल प्रोसेस है। कोई कहे मैं तो बच्चा ही रहूंगा, बूढ़ा नहीं, ये प्रोसेस है, ये होना ही है। बचपन, युवा, प्रौढ़ और बुढ़ापा। मौसम में भी आप देखिए, प्रकृति जगत में भी आप देखिए, बसंत, बहार, प्रकृति पूरी खिल उठती है। गर्मी, सर्दी, पतझड़, वापस बसंत बहार। रोज की दिनचर्या देखिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। हर चक्र अपनी अवस्था बदलता है। इस प्रकार संसार का खेल भी चार स्टेज से गुजरता है, जो उनकी शुद्ध सत्य स्थिति है उसे सतयुग कहते हैं। जहां आत्मा और प्रकृति दोनों सत्य है उसे सतयुग कहते हैं। कलयुग के लिए हम क्या कहते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जब प्रकृति और पुरुष दोनों झूठे पतित बन जाते हैं तो कलयुग का है। तो चित्र में आप देखिए स्वस्तिक दिखाया है और स्वस्तिक का चिन्ह आप जानते हैं। हर शुभ कार्य में हम स्वस्तिक निकालते हैं। कोई उद्घाटन होता है, हम स्वस्तिक निकालते हैं। अकाउंट शुरू करते हैं, रजिस्टर में व्यापारी लोग स्वस्तिक निकालते हैं। अब ये स्वस्तिक का चिन्ह हम बनाते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये चिन्ह हम क्यों बनाते हैं। इसमें कौन सा ज्ञान है, क्या इसका राज है? वास्तव में स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है, चार युगों का प्रतीक है कि सृष्टि का चक्र चार स्टेज से गुजरता है। इसलिए स्वस्तिक के चार सरीखे भाग हम करते हैं, जो चार युगों की निशानी है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। चारों की आयु समान है 1250 वर्ष। टोटल साइकिल 5000 वर्ष। सतयुग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ राइट साइड जा रहा है, जो शुभ की निशानी। सतयुग वो टाइम पीरियड है जब प्रकृति और पुरुष दोनों सतो प्रधान हैं, जहां सुख ही सुख है, कुशल मंगल ही कुशल मंगल है, वहां अशुभ कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वस्ति का हाथ राइट साइड बताए। गोल्डन एज जिसे हम कहते हैं, उसे स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, सुखधाम कहो, हर धर्म में इसका यादगार है कि मानव जाति संसार का खेल अपने आदि काल में स्वर्णिम काल था। इसलिए मुस्लिम भाई बहने जन्नत बहिष्त कहते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने पैराडाइज हेविन कहते हैं, सिख भाई बहने उसे सचखंड सुखधाम कहते हैं, हिंदू भाई बहने स्वर्ग वैकुंठ उसे कहते हैं। वो ये सतयुग का काल है, गोल्डन एज। चित्र में देखिए त्रेता युग में स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से नीचे जाता है। मानस त्रेता युग में हम राइटियस हैं, वहां कोई गलत काम नहीं करते हैं, पाप नहीं, दुख शांति नहीं, पर हमारी राइटियसनेस की परसेंटेज डाउन होती। कोई चीज बिल्कुल नई है और 10 दिन भी हम यूज करें तो उसकी चमक दमक में अंतर आ जाता है। हम कह सकते हैं सतयुग स्वर्ग है, त्रेता युग सेमी स्वर्ग। ये दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में पवित्रता, सुख और शांति। द्वापर युग में आप देखिए स्वस्ति का हाथ लेफ्ट साइड बताए, जो अशुभ की निशानी मानी जाती, क्योंकि द्वापर युग से हम मनुष्य आत्माएं फिर से बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, विकारों के मार्ग पर जाते हैं, इसलिए दुख शांति शुरू होते हैं, भक्ति अनेक धर्मों का आना शुरू हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं द्वापर युग में वाम मार्ग में जाते हैं, विकारों के मार्ग पर जाते हैं, और कलयुग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है। माना कलयुग में दुख, अशांति, समस्याएं, मुसीबतें, विघ्न, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, इसकी अति होती। इसलिए कलयुग को आयरन एज कहा है, द्वापर को कॉपर एज, ताम्र युग कहते हैं, और त्रेता युग को रजत, सिल्वर एज कहते हैं। अब चित्र में आप देखिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग कहा है, घड़ी के दो कांटे के रूप में उसे दिखाया है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल संगम युग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम कलयुगी पतित मनुष्यात्माओं को सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देकर पवित्र योगी बनाते हैं। भाइयों और बहनों, इस महापरिवर्तन के समय जो अभी चल रहा है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल संगम युग अभी चल रहा है, इस महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश को मानकर जो कलयुगी मनुष्य आत्माएं अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएगी, वो ही आने वाली सतयुगी दुनिया में आ सकेगी। वो ही आत्माएं सतयुग में आ सकेगी। इसलिए ये परमात्मा का आदेश है, समय की पुकार है और भगवान का आदेश है। इस महापरिवर्तन की वेला के समय यही संदेश है कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ और आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बन। अब लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जब परमात्मा का ये संदेश लोगों को देते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर गलत फहमी करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़ाती है, ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती, ब्रह्मा कुमारियां नहीं बनाती है, हम तो निमित्त है। परमात्मा का आदेश है हर संबंध को पवित्र बनाना है, क्योंकि सतयुगी दुनिया स्थापन करना है, इसलिए हर आत्मा का सहयोग चाहिए अपने पवित्र योगी जीवन का सहयोग। मैं चाहूंगी कि आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, अब आप सबको ये कहेंगे कि भगवान का आदेश है पवित्र बनो योगी बनो, ठीक है कहेंगे। हम तो अपने जीवन से संदेश देते हैं, क्योंकि हमने भगवान के आदेश को मान्य कर इस महापरिवर्तन की वेला के समय, क्योंकि अब कलयुग खत्म होगा और नई पवित्र दुनिया आएगी। संसार का नियम है जिसकी अति होती है उसका अंत जरूर होता है। आज आप देख रहे हैं कलयुग में अनैतिकता, व्यभिचार, विकार, पापाचार अति पर जा रहा है, इसका अंत जरूर होना है। परंतु उसके लिए निमित्त हम पवित्र आत्माओं को बनना है, इसलिए हम भगवान के आदेश को मान्य कर अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं और परमात्मा का दिव्य संदेश विश्व में फैलाते हैं। और ये जरूरी है, ये समय ऐसा है, इतनी विकारी दुनिया बन चुकी है, अब वो चल नहीं सकती, इतनी सड़ गए हैं सबके चरित्र। अगर हमें नई दुनिया लानी है तो सत्यता, पवित्रता, सच्चरित्रता, प्रेम, विश्वास, इन सद्गुणों के और सत्कर्मों के आधार से ही हम नई दुनिया स्थापन कर सकते हैं। इसलिए ये भगीरथ कार्य यहां हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सब भी जरूर सतयुगी दुनिया में आना चाहेंगे, चाहेंगे हाँ? तो अपने वर्तमान जीवन को अब अपनी मनमर्जी से नहीं जीना है, भगवान की आज्ञा अनुसार उससे बहुत दिव्य, श्रेष्ठ, पवित्र बनाना है। तो भाइयों और बहनों, सृष्टि का खेल एक अद्भुत खेल है। ये सृष्टि रंगमंच है, सूर्य चांद सितारे इस मांडवे की मंडप की रोशनी है। हम सभी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है, शरीर हमारी ड्रेस है, इस शरीर रूपी ड्रेस को पहनकर हम आत्माएं वैरायटी पार्ट प्ले करते रहते हैं। आप रोज देखिए सुबह से लेकर रात तक कितने वैरायटी रोल्स आप प्ले करते हैं। अभी अभी आप माँ के रोल में हैं, अभी अभी आप खुद बेटी के रोल में हैं, कहीं आप पत्नी के रोल में हैं, कहीं आप बहन के रोल में हैं, कहीं आप ऑफिसर हैं, कहीं आप नागरिक हैं। कितने रोल्स हम प्ले करते हैं, ये हमारे रोल है। जैसे ड्रामा में, फिल्म में एक्टर वैरायटी रोल्स प्ले करते, कोई फिल्म में वो एक्टर राजा बनता है, दूसरी फिल्म में वो शराबी बनता है, कहीं वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, कहीं वो स्मगलर बनता है, वैरायटी पार्ट्स प्ले करते हैं ना। पर वो पार्ट है, वो खुद रियल ऐसा नहीं है, उसका अपना परिचय अलग है, ये तो उनके पार्ट है फिल्म में। तो हम इस वर्ल्ड ड्रामा में कभी डॉक्टर का, कभी इंजीनियर का, कभी पिता का, कभी माता का हम रोल प्ले करते हैं, पर हम ये नहीं है। मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास हूं, मैं ऑफिसर हूं, इस अभिमान में नहीं आना है। ये हमारा पार्ट है, हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारा सही परिचय तो ये है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का बच्चा हूं, ये हमारा सत्य परिचय। हमने सबसे बड़ी भूल इस विश्व नाटक में यही की कि हम अपने सत्य परिचय को भूल गए और जो पार्ट मिला उसके अभिमान में आ गए। हमने सच में अपने आप को मान लिया कि हाँ मैं ये हूं। अब फिल्म में एक एक्टर राजा बनता है पर घर जाकर भी वो कहे कि मैं राजा हूं तो कोई मानेगा? सब कहेंगे भाई रहने दो, तुम फिल्म में राजा थे या नहीं? तो हमारी भूल ये हो गई है कि जो रोल मिला हमने खुद को वही समझ लिया, जो शरीर ड्रेस मिला हमने अपने को शरीर समझ लिया, जो हमारी अविनाशी पहचान हम आत्मा भगवान के बच्चे इसको हम भूल गए, इसलिए सारा ड्रामा गड़बड़ हो गया। आज सारी बातें प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। और दूसरी दो भूल हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में ये की। अब आप देखिए हर एक्टर का काम क्या है। ड्रामा में अनेक एक्टर होते हैं पर हर एक्टर का कार्य क्या है कि उसे जो पार्ट मिलता है, रोल मिलता है, वो अच्छी तरह उससे प्ले करना है, उसे अपने रोल पर ध्यान देना है। पर अगर कोई एक्टर अपने रोल पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के रोल को देखता रहता है, उस पर ध्यान उसका जाता है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? वो अपना रोल अच्छी रीति प्ले नहीं कर सकेगा। तीन डांसर है, तीनों एक साथ डांस कर रहे, एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी के डांस पर ध्यान दे रही है कि इनका ताल मिलता है कि नहीं, इनका ताल मिलता है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? समझ गए ना? हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया? हमने दूसरों के कर्मों पर ध्यान दिया। इनके घर में क्या चलता है, इनकी बहू कैसी है, ये धंधे में क्या कर रहा है, ये कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, सारा दिन दूसरों के कर्मों को ही देखते रहते हैं। इसलिए रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कर्म बिगड़ गए। इसलिए पूरा संसार का खेल बिगड़ गया है। वास्तव में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। और दूसरी बात कि हरेक एक्टर को अपना पार्ट प्ले करना है। मान लो एक दृश्य में चार एक्टर है, एक को कहा है डायरेक्टर ने कि आपको रोना है, उस समय दूसरे एक्टर को कहा कि तुमको हंसना है, तीसरे को बोला कि तुमको चुप होकर देखना है, और चौथे को कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ बोलते रहना है, एडवाइस देते रहना है। अब चारों ही एक्टर को क्या करना चाहिए? अपना रोल प्ले करना चाहिए। पर अगर एक एक्टर को रोता हुआ देखकर दूसरा भी रोने लगे, तीसरा भी रोने लगे, चौथा भी रोने लगे, तो ड्रामा ठीक चलेगा? हाँ, चलेगा? नहीं चलेगा। हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं? मुझे क्या करना है, मुझे सोचना है, मुझे उस पर फोकस रहना है, इसके बजाय सब ऐसे करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। उसने गुस्सा किया इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया, उसने दो गाली बोली तब मैंने चार बोली। सब भ्रष्टाचार करते हैं तो हम भी करेंगे। हम अपने कर्म को भूल गए, अपनी डिसिप्लिन को भूल गए। इसलिए अब जब ये नाटक बिगड़ गया है, पूरा होने आया है, तो परमात्मा जो इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर है वो आकर फिर से हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि वास्तव में तुम्हें एक्शन कैसे करने। इसलिए अभी जो समय चल रहा है, जब स्वयं भगवान हमें हर बात का ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, हमें राइट डायरेक्शन देते हैं, हम जितना चाहें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम जितना बेस्ट एक्टर बनना चाहें, हीरो एक्टर बनना चाहें, हम बन सकते हैं। इसलिए लक्ष्य क्या रखना है कि हीरो एक्टर बनना है, हर एक्शन बेस्ट करनी, हर कर्म श्रेष्ठ करना है। अब जिनको एक्शन एक्यूरेट करना नहीं आएगा वो एक्टर सोचेगा ना कि इससे तो मैं निकल जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बरोबर आता नहीं। हमें भी जब श्रेष्ठ कर्म करना नहीं आता है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सुख पाना नहीं आता है, तो हम दुखी होकर सोचते हैं कि इससे तो इस दुनिया से चले जाए तो अच्छा है, इस जन्म मरण के चक्र से ही निकल जाए तो अच्छा है। पर एक्टर माना पार्ट प्ले करना, एक्शन करना। इसलिए परमात्मा अब कहते हैं, जब ये नाटक अब पूरा होने आया है, परमात्मा कहते हैं अब नाटक पूरा हो रहा है, फिर से शुरुआत हो उससे पहले हर आत्मा को शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। देखो, एक शो पूरा हो जाता है, क्या होता है? ऑडियंस, एक्टर सब हॉल खाली करके निकल जाते हैं, फिर दूसरा शो शुरू होता है, दूसरा ऑडियंस आता है, पर उस समय हम खाली कर देते हैं, तो अब ये नाटक पूरा हो रहा है, कलयुग पूरा हो रहा है। अब हम आत्माओं को शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर अपनी ओरिजिनल शुद्ध आत्मा स्थिति में स्थित होकर वापस घर जाना है। स्वयं परमात्मा हमें लेने आए हैं, इसलिए अभी हमें या तो पुरुषार्थ करके पावन बनकर वापस घर जाना है। अगर हम समय और परमात्मा के आदेश को मानकर अभी पवित्र योगी नहीं बनेंगे तो कर्मों की सजा खाकर भी हर आत्मा को शुद्ध बनना है और वापस घर चलना है, क्योंकि नाटक का ये चक्र अब पूरा हो रहा है। तो चलना है, घर चलना है। हाँ, कौन सा घर? पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, हाँ, वापस असली घर। अब आपके ऊपर है कि या तो प्यार से चलो, नहीं तो मार से चलो। क्या पसंद है? प्यार से चलेंगे ना? हाँ, स्वयं भगवान हमें लेने आए हैं। सारी दुनिया व्यक्ति घूमती है तो आखिर क्या चाहती है? कि भाई अब जल्दी अपने घर पहुंच जाए। तो पूरा नाटक अपने पार्ट प्ले किया है, अब नाटक पूरा हो रहा है, तो घर जाना है ना? देखो आवाज ही नहीं दे रहे। हाँ, तो खुशी से बोलो ना कि भाई चलेंगे परमात्मा के साथ, इसलिए वो अभी हमें साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। माँ बाप कहते हैं ना कि देखो हमारे साथ चलना है तो गंदे कपड़े बदली कर लो, हाथ पांव धो लो, तैयार हो जाओ तो ले जाऊंगी, ऐसा गंदा नहीं ले जाऊंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मैं आया हूं लेने, फिर तुम्हें सतयुग में ही भेज दूंगा, पर मेरे साथ चलना है तो मेरा जैसा बनो। इसलिए ये सारा पुरुषार्थ अभी हम करते हैं कि फिर से हम अपना सच्चा सोना बन जाएं, जो मिक्सचर हमने किया है वो सारा निकाल दें और प्योर सोना बन जाए। तो ये है सृष्टि का खेल, वर्तमान समय, भगवान का आदेश और हमारा रोल। तो अब आप जरूर ये सोचेंगे कि भगवान क्या कहते हैं और अब मुझे क्या करना है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो नहीं सोचना है, परमात्मा क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है वो आप चिंतन करेंगे और अपना पूरा प्लान बना कर जाएंगे कि हम सच्चे योगी बनेंगे और सतयुग के लायक बनेंगे। ओम शांति। प्यार से मन ही मन शिव बाबा को आप बताएंगे कि अब आप अपने जीवन में क्या करेंगे। आप जैसे आए हैं ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे ना? अपना अच्छा परिवर्तन सुधार करके हमें जाना है ताकि लोग कहें कि ये शिव बाबा के घर से कुछ अच्छा सीख कर आए हैं। तो बहुत सुंदर गीत हम सुनेंगे, ध्यान से सुनना। इस गीत में शिव बाबा का आदेश हमें बताया गया है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, गीत ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन का ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे।
मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। चरित्रवान ही यहाँ महान है।